हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 22, 23 एंड 24। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिनी, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णाद्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानसराज हंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम् रम्याकाचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो मह श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्राधरो यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात होणा गपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनाख सादय येने चश पापा यदपाशयाशया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 22, 23 एंड 24। आज परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवतम का सेकेंड प्रश्न है। श्रीमद् भागवतम का परीक्षित महाराज का जो पहला प्रश्न था वो पहले स्कंद के 19वें अध्याय के श्लोक नंबर 37 में उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, उसी के अंदर दूसरा प्रश्न था। एक प्रश्न ये था कि एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, सब समय क्या करना चाहिए, और स्पेशली म्रियमाणस्य सर्वदा, जो मरने वाला है, मृत्यु के स्टेज पे खड़ा है, उस व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए। तो एक साथ दो प्रश्न वो हो गए। और आज दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 22 में परीक्षित महाराज सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, और इस सेकंड क्वेश्चन में तीन बातें पूछ रहे हैं। जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था ना, श्लोक नंबर 21 में, यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षण आशु संपद्यते योग आश्रयम भद्रमीश मीक्षता यस्यम संधार्यम। यानी इस तरह से जब कोई योगी बार बार भगवान के ऊपर चिंतन करता है तो भक्ति लक्षण उत्पन्न होते हैं, आशु संपद्यते योगम, और बहुत ही शीघ्र भगवान की भक्तिमय सेवा में लगकर अत्यंत ही कल्याणमय आश्रयम भद्रमीक्षते, भद्रमीक्षते बहुत ही सर्व कल्याणमय भगवान का आश्रय प्राप्त होता है और भगवान की भक्ति में मन लगने लगता है, भौतिक मलिनता समाप्त हो जाती है, हृदय की भौतिक वासना समाप्त हो जाती है, और कृष्ण जो कि बहुत ही भद्रम है, वास्तव में कल्याण का है, तो ऐसे कृष्ण के अंदर मन लगने लगता है। इसी धारणा जब बार बार मन के अंदर भगवान का चिंतन किया जाता है तो उससे बहुत ही जल्दी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो अब उतना सुनने के बाद परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। राजोवाच यथा संधार्यते ब्राह्मण धारणं यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम् यथा संधार्यते ब्राह्मण धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम् यथा संधार्यते ब्राह्मण धारणं यत्र सम्मता यादृशीव हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्। राजोवाच अर्थात सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने ऐसा कहा, यथा मन जिस तरह संधार्यते ब्राह्मण, हे ब्राह्मण जिस तरह संधार्यते मतलब धारणा बनाई जाती है, ये धारणा क्या चीज है, मतलब पहला प्रश्न है कि धारणा है क्या वो बताइए, और धारणा यत्र सम्मता, धारणा यत्र मतलब जिस यहाँ या जैसे, सम्मता संक्षेप में यादृशी यादृश्य का मतलब होता है जैसे वो धारणा का स्वरूप किस तरह से की जाती है और किस में की जाती है। मतलब ये दो क्वेश्चन है कि यथा संधारित भ्रमण, यानी धारणा क्या चीज है, धारणा यत्र सम्मता, ये धारणा किस तरह से की जाती है, यादृशेवा, और ये धारणा किस में की जाती है, हरे दाशु पुरुषस्य मनोबलम, और वो बताइए कि मतलब ये हरे दाशु फौरन से हरण कर लेती है किस चीज को, पुरुष के या व्यक्ति के मन में लगे हुए संपूर्ण मल को जो बहुत शीघ्रता से नष्ट कर देती है, वो कौन सी धारणा है, ये क्या चीज है, कैसे की जाती है, किस में की जाती है, क्योंकि हर कोई तो अपने मन को, मन तो किसी न किसी वस्तु में लगा रहता है, तो ये कौन सी धारणा के विषय में आप बता रहे हो जिससे जीव के हृदय में स्थित संपूर्ण मलिनता समाप्त हो जाती है। अत्यंत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं धारणा के विषय में, धारणा का वास्तव मतलब क्या है, मन को खींच कर भगवान के चरणों में लगाना, तो उसके विषय में पूछ रहे हैं। बहुत ही सुंदर वे कहते हैं, अनुवाद देखिए, सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने पूछा है, ब्राह्मण कृपा करके विस्तार से यह बताइए कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थित किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मेल हटाया जा सके, कहाँ और कैसे, यानी क्या है धारणा के विषय में विस्तार से बताओ, इनको कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है उसके विषय में बताओ, कैसे की जाती है, किस में की जाती है, कहाँ की जाती है धारणा। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बद्ध जीव के हृदय की सारी मलिनता ही उसके सारे कष्टों की जड़ है। वास्तव में दुख नहीं है भौतिक जगत में, दुख तो हृदय की मलिनता है, क्योंकि और मलिनता क्या है, भौतिक वस्तुओं की आसक्ति। अगर भौतिक वस्तुओं की आसक्ति नहीं है, भौतिक व्यक्तियों की आसक्ति नहीं है, तो दुख का सवाल ही नहीं है। दुख केवल हृदय की मलिनता है। हृदय पवित्र हो जाए, आसक्ति भगवान के अंदर जम जाए, भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाए, मलिनता समाप्त हो जाए, तो फिर दुख का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व के अनेक कष्टों से घिरा हुआ है, किंतु अपने निपट अज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपने दीर्घ बंदी जीवन की अवधि में हृदय में संचित गंदगी को दूर करने में असमर्थ रहता है। वो असमर्थ रहता है, कुछ भी कर लेता है, हृदय की गंदगी जो है वो उसको भौतिक बंदी ग्रह में और भी तेज जकड़ती जाती है। किसी के प्रति ईर्ष्या होती है, किसी के प्रति घृणा होती है, किसी के प्रति प्रेम होता है, किसी के प्रति द्वेष होता है, तो हम अधिक से अधिक इस जीवन में और भी बंदी होते जाते हैं अलग अलग जीवनों में, क्योंकि हृदय मलिन है और हम स्वयं से हृदय की गंदगी को दूर करने में असमर्थ है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वास्तव में ये परमेश्वर की इच्छा अनुसार सेवा करने के निमित्त आया होता है, किंतु हृदय की गंदगी के कारण वह अपनी मनोकल्पित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। क्यों आया संसार में? जीव वास्तव में संसार में आया है कि हम भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करें और इच्छा अनुसार कार्य करके पुनः अपने वास्तविक धाम को प्राप्त कर लें। लेकिन यहाँ पर आता है तो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और हृदय की गंदगी के कारण वह अपनी मनोकल्पित इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। वो सोचता है ऐसे आनंद प्राप्त होगा, ऐसे आनंद, उस वस्तु को प्राप्त कर लूंगा तो आनंद आएगा, उस व्यक्ति को प्राप्त कर लूंगा तो आनंद आएगा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ये इच्छाएं उसे मन की शांति प्रदान करने की बजाय नई नई समस्याएं उत्पन्न कराती हैं और इस तरह उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में बांध देती हैं। सकाम कर्म तथा प्रयोग सिद्धि ज्ञान का यह मेल परमेश्वर की संगति करके ही दूर किया जा सकता है। यहाँ भौतिक जगत में कुछ भी प्राप्त कर ले, उसे शांति प्राप्त नहीं होगी, बल्कि और भी नई नई समस्याएं उत्पन्न होंगी। जितनी ज्यादा वस्तु और व्यक्तियों के अंदर आकर्षण होगा, आसक्ति होगी, उतनी ही अशांति बढ़ेगी। शांति कभी भी भौतिक वस्तुओं के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती है, इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर उपाय बताया कि यदि इस भौतिक मलिनता का सफाया करना है, सकाम कर्म तथा प्रयोग सिद्धि ज्ञान का यह मल, ये जो मलिनता है, परमेश्वर की संगति करके ही दूर किया जा सकता है। भगवान के साथ यदि अपने संबंध को जोड़ दिया जाएगा तो मलिनता साफ हो जाएगी, और जब हृदय स्वच्छ हो जाएगा तो भौतिक कोई भी कष्ट जो है वो हमें दुखी नहीं कर सकेगा। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा अपना सानिध्य प्रदान कर सकते हैं। अतएव जो लोग परम के साकार रूप में श्रद्धा दृढ़ नहीं कर पाते, उन्हें भगवान के विराट रूप का अर्थात भगवान के वैश्विक निर्विशेष पहलू का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यहाँ पर शिला प्रभुपाद उन व्यक्तियों के विषय में जो बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं, जो भगवान के साकार स्वरूप के अंदर अपनी अपने प्रेम को विकसित नहीं कर पाते हैं, लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं, वो किसी भी प्रकार से जीव की जैसी भी मति होती है उस प्रकार से उसको सानिध्य प्रदान करते हैं। और जो साकार रूप में श्रद्धा नहीं रख सकते हैं, उनकी श्रद्धा नहीं होती है कृष्ण के स्वरूप में, तो भगवान के विराट स्वरूप में और ये जो निर्विशेष स्वरूप है उसका सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। भगवान का विराट यानी निर्विशेष पहलू उनकी असीम शक्तियों का रूप है। ये भी भगवान की शक्ति है। ब्रह्म स्वरूप में भगवान प्रत्येक कण कण में विराजमान है, तो चूंकि शक्तिमान तथा शक्ति अभिन्न है, अतएव उनके विराट रूप की निर्विशेष धारणा भी बद्ध जीव को अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का सानिध्य प्रदान करने प्राप्त करने में सहायक होती है। भगवान और भगवान की समस्त शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए जो भगवान के स्वरूप में साकार स्वरूप में प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो अगर भगवान के निराकार स्वरूप में ही अपना आकर्षण लगाते हैं तो भगवान का सानिध्य प्राप्त करने में सहायक होती है, और इस तरह क्रमशः साकार रूप के संपर्क की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। धीरे धीरे ऊपर आ जाता है, और जब उसे ये पता चलता है कि निराकार ज्योति तो भगवान के ही साकार स्वरूप की एक तेज है, जैसे सुखदेव गोस्वामी स्वयं भी पहले निराकार का चिंतन करते थे, लेकिन जब भगवान के गुणों को, भगवान की लीलाओं को श्रवण किया तो कृष्ण के प्रति उनका आकर्षण निर्माण हो गया। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सौभाग्य से किसी शुद्ध भक्त का यदि सानिध्य प्राप्त हो जाएगा तो क्रमशः साकार रूप की ओर आकर्षण उत्पन्न होगा। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, महाराज परीक्षित पहले से भगवान श्री कृष्ण के साकार स्वरूप के प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, अतएव उन्हें सुखदेव गोस्वामी से यह पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि मन को कहां और कैसे भगवान के निर्विशेष विराट रूप में लगाया जाए। अभी वो तो है ना, भगवान के भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, फिर भी धारणा के विषय में, ये धारणा क्या है, मैंने आपको बताया था अष्टांग योग में जैसे यम नियम आसन धारणा समाधि ध्यान ये सब आता है ना, तो उसमें अष्टांग रूप में जो अष्टांग योग में जो योगी जन होते हैं वो धारणा करते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी को क्या जरूरत थी कि वो धारणा के विषय में पूछे, निर्विशेष विराट रूप में कि किस तरह से धारणा को टिकाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, कैसे। लेकिन श्री प्रभुपाद जी उसका कारण बताते हैं, किंतु उन्होंने उन सब के लाभ के लिए इस विषय में विशद जिज्ञासा की जो भगवान के दिव्य व्यक्तिगत लक्षणों को ज्ञान एवं आनंद से परिपूर्ण सनातन स्वरूप के रूप में समझने में असमर्थ नहीं है। जो भगवान के इस स्वरूप को समझ नहीं पाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं है। भगवान बहुत करुणामय है, भगवान प्रत्येक जीव को अवसर प्रदान करते हैं, और भगवान के भक्त जो होते हैं वो उनसे भी अधिक करुणामय होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जीव चाहे जिस भी स्थिति में है, उसे भगवान का संपर्क प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं उन्होंने इसलिए पूछा था तो जो निर्विशेषवादी हैं उनके लिए एक मार्ग प्राप्त हो उनको। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आगे कि जो भगवान के दिव्य व्यक्तिगत लक्षणों को ज्ञान एवं आनंद से परिपूर्ण सनातन स्वरूप में समझने में समर्थ नहीं है, अभक्त वर्ग के लोग भगवान के साकार रूप के विषय में सोच नहीं सकते, उनके अल्प ज्ञान के कारण राम या कृष्ण जैसे साकार स्वरूप उनके लिए नितांत क्रांतिकारी है। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हो कि वो लोग तो राम और कृष्ण के साकार स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं समझ सकते, उन्हें भगवान की शक्ति का बहुत ही कम अनुमान होता है, बहुत कम। वो भगवान के साकार स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। वो ये सोचते हैं ये भगवान कैसे हो सकता है। जैसे भगवान ने यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी 9.11 में बताते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति, जो मूढ़ हैं, बेवकूफ हैं, वो मुझे नहीं समझ सकते। जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ तो वो मेरा उपहास करते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी उसी विषय में बता रहे हैं कि 9.11 में भगवान ने यह बताया है कि अल्पज्ञ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान की अचिंत्य शक्ति से अनजान रहते हैं। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से मानव समाज में या जीवों के अन्य समाज में विचरण करते हुए भी अपने दिव्य पद से रंच मात्र भी हटे बिना वही सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते हैं। अतएव ऐसे व्यक्तियों के लाभ के लिए जो भगवान के साकार दिव्य स्वरूप को स्वीकार करने में असमर्थ है, महाराजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि प्रारंभ में मन को भगवान पर किस तरह से स्थिर किया जाए, और गोस्वामी जी ने निम्नवत उसका विस्तार से उत्तर दिया है। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के इस महत्वपूर्ण प्रश्न को बहुत ही सुंदर तरीके से विस्तार से बताएंगे। श्री शुक उवाच, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्थिया। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्थिया। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्थिया। तो धारणा के लिए भगवान के अंदर मन लगे उसके लिए पहली शर्त वे बताते हैं कि जितासनो, जिस आसन पे आप बैठ रहे हो निश्चित रूप से वो आसन को जीता हुआ होना चाहिए। व्यक्ति ऐसा एक निश्चित आसन होना चाहिए जिस पर जीव कोई व्यक्ति आसानी से बैठकर भगवान के अंदर मन लगा सके। एक आसन, एक ऐसा स्थान जो है वो चुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी बैठकर किसी भी तरीके से बैठकर अपनी साधना स्टार्ट कीजिए। नहीं, आसन होना बहुत आवश्यक है। हम भौतिक जगत में भी देखते हैं, स्कूल में जाते हैं तो एक आसन पर बैठकर हमें स्टडी कर, ऐसा नहीं कभी भी कहीं पर खड़े हो जाओ, वहां पर देख रहे हो, यहाँ कर रहे हो, एक आसन पर, निश्चित आसन पर बैठकर आप स्टडी करते हो। उसी तरह से जब कोई कार ड्राइव करता है तो उसका एक आसन है, भाई यहीं पर बैठकर आपको कार ड्राइव करना। ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी है आप ना, और ऐसे भी बताया जाता है ऐसे बैठना है। ऐसा नहीं कि आप पालती मींच कर बैठे हो تو پھر تو آپ کے پاؤں جو ہے وہ بریک کو دبا ہی نہیں سکیں گے, ہے نا. مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے نا بیٹھنے کا, کار کس طرح سے ڈرائیو کر, اسی طرح سے یدی ایروپلین کو فلائی کرنا ہوگا تو وہ آپ بیٹھ نہیں سکتے, پھر آپ کو کھڑے ہو کر کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں پر ایسی. تو ہر ایک وستو کو چلانے کے لیے آپ کو ایک نشچت روپ سے آسن پر بیٹھنا ہوتا ہے, اور اس آسن پر بیٹھنے کا ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے نا. ایسے اپنی مرضی سے آپ نہیں کر سکتے ہو. یدی کوئی بولے کہ نہیں بھائی گاڑی کو کار کو میں ڈرائیو کروں گا کھڑا ہو کر, میں کھڑا ہو کے کروں گا, وہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اتنی اسپیس ہی نہیں ہوتی ہے, کھڑے نہیں ہو سکتے, بیٹھنا ہوتا ہے پیر نیچے کر کے. تو ہر ایک چیز کا ایک نشچت آسن ہوتا ہے, اسی طرح بھکتی میں بھی آسن بہت مہتوپورن ہوتا ہے. اور جب نام جب کرتے ہیں تو ایک ایسا آسن, جتاسن کا مطلب ہوتا ہے جس آسن پر آپ 3 گھنٹے آرام سے بیٹھ کر بھگوان کا چنتن کر سکو یا نام جپ کر سکو یا کوئی بھی کریا کر سکتے ہو, شاستر پڑھ سکتے ہو. 3 گھنٹے یدی آرام سے بیٹھ کر اس پر, جیسے جیسے ہماری سادھنا درڑ ہوتی جائے گی نا ویسے ویسے جتاسن ہوتے جاتے ہیں. جتاسن مطلب آسن درڑ ہوتا جائے گا, اور ایسے دھیرے دھیرے پہلے 10 منٹ پھر 20 منٹ پھر آدھا گھنٹہ ایسے کرتے کرتے 3 گھنٹے تک اگر دھیان ٹک جاتا ہے تو اس کو جتاسن کہا جاتا ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں بھکتی میں بھی آسن کا بہت مہتوپورن ہے. یدی آپ کتھا شون کر رہے ہو تو ایک نشچت آسن ہونا چاہیے, وہاں پر بیٹھ کر دھیان سے شون کرنے کا ایک الگ ہی پربھاؤ پڑتا ہے. نام جب کرتے ہیں تو بھی ایک آسن ہو اس کے اوپر بیٹھ کر, ایک ایسا ہو جہاں سامنے تلسی مہارانی دکھ رہی ہو یا بھگوان کے وگرہ کے درشن ہو رہے ہوں, وہاں پر اچھا واتاورن ہو, تو وہاں پر بیٹھ کے یدی ہم نام جپ کریں گے تو بہت ہی آنند سے ہم اپنی سادھنا کر سکیں گے. اسی طرح سے ہر کاریہ کا آسن ہوتا ہے. اب آرتی یدی آپ کو کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو آسن پر بیٹھنا نہیں ہوگا, لیکن اس کے لیے بھی ایک آسن ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ کو کھڑا ہو کے پھر بھگوان کی آرتی کرنی ہوتی ہے. یدی پرنام کرنا ہے تو آپ کھڑے ہو کر پرنام نہیں کر سکتے ہو, پرنام کرنے کے لیے آپ کو مستک کو جھکانا پڑے گا. تو ایک آسن اور ایک طریقہ ہوتا ہے ہر کاریہ کرنے کا, اسے بھگوان یہاں پر بتا رہے ہیں جتا آسن. اور دوسرا ہے کیا, جتا شواسو, مطلب اپنے سانسوں کو کنٹرول کرنا ہے, اپنی جو سانسیں ہیں. اب دھارنا کے وشے میں پوچھا ہے تو شری پربھوپاد جی نے بولا کہ کیوں کہ وہ بھگوان کے ساکار سوروپ میں وہ اپنے من کو نہیں لگا سکتا ہے, اسمرتھ ہے, تو شکدیو گوسوامی ان پر کرپا کرنے کے لیے جو نرویشیش کے اندر من لگاتے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ یوگی کو اپنی سانسوں کو جیتنا ہوتا ہے. جتا شواسو, واستو میں یہ اسمبھو ہے. آج کے یوگ میں دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ سب ہمارے لیے شواس کو کس طرح سے جیتنا ہے, کس طرح سے نظر کو ناک کے اوپر ٹکانا ہے, آنکھیں آدھی بند ہوں آدھی کھلی ہوں, اور کس طرح سے جنگل میں جا کر ہرن کی چھال پہ بیٹھنا ہے, اور یہ سب آج کے یوگ میں کیرتن میں ناچنا یہی پرانایام ہے. کیرتن میں ناچو جور جور سے, اور اس کے بعد جب دیرگھ شوانس ہوتی ہے نا, سب سے بڑا پرانایام یہی ہے. تو یہاں پر پھر بھی بتایا جا رہا ہے جتا سنگو, یہ بہت ہی مہتوپورن ہے کہ سنگ کو تیاگ کرنا ہے. سنگ کا تیاگ ہے مطلب بھوتک وستوؤں کی آسکتی سماپت, ہردے کے اندر کیول کرشن کے لیے پریم ہونا چاہیے کہ میرا گول تم ہو, ہے کرشن مجھے تمہیں پراپت کرنا ہے. جب تک بھوتک آسکتی بنی رہے گی تب تک وہ کرشن پراپت نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ کرشن کیول پریم چاہتے ہیں, اور پریم گلی اتی ساکڑی یا میں دوئی نہ سمائے, یہ بہت ہی تنگ گلی ہے, چھوٹی سی ہے, اور اس میں دو نہیں آ سکتے, اس لیے بھوتک آسکتی سماپت کرنی پڑے گی, سنگ کا تیاگ, اور اس کے بعد جتیندریا, اندریوں کو جیتنا, یہ بہت مہتوپورن ہے. یدی ہم چاہتے ہیں کہ من بھگوان میں لگے, یدی ہم چاہتے ہیں کہ ہردے کے اندر کرشن پریم اتپن ہو, تو سب سے پہلے بھگوان شری کرشن بھگوت گیتا میں ارجن کو بولتے ہیں तस्मा तमेन्द्रियाण आदौ नियम या रबते अर्जुन, सबसे पहले अपने इंद्रियों को नियमित करो। इंद्रियां जो है वो हर वक्त अपने विषयों की ओर भागना चाहती है। आंखों को वो देखना होता है जो कि मन को अच्छा लगता है। आंखें चाहती हैं बहुत ही अपवित्र भौतिक दृश्य देखना चाहती हैं। ऐसी आज का वातावरण ऐसा है कि ना चाहते हुए भी हमको कुछ ऐसी वस्तुओं को देखने का अवसर प्राप्त होता है। फिर मन क्या बोलता है? मन बोलता है कि नहीं, देखने से क्या फर्क पड़ता है, देख लो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, जितेंद्रिय आंखों को वो नहीं देखने देना है जो कि मन चाहता है, बल्कि नेत्रों को भगवान के दर्शन कराने हैं। भले ही मन कुछ और इच्छा करता है, लेकिन जिह्वा को वो नहीं खिलाना है जो कि मन इच्छा कर रहा है, परंतु जिह्वा को वही खिलाना है जो भगवान को भोग लगा होता है। कान भी अक्सर कुछ बुरा सुनने के लिए बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं, परंतु उनको केवल भगवान के विषय में ही सुनने के लिए प्रेरणा देनी है। जितेंद्रिय का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को वो करने नहीं देना है जो कि मन चाहता है, बल्कि इंद्रियों, क्योंकि जो मन है ना वो सिक्स सेंस है, छठी इंद्रिय, सारी इंद्रियों को है ना उंगली के ऊपर नचा रहा होता है, लेकिन मन को बुद्धि से वश में करना है, बुद्धि को सारथी बनाना है और इस तरह से इंद्रियों को जीतना है कि नहीं, मैं तुम्हें ना वो चीज खाने दूंगा, ना वो वस्तु देखने दूंगा, ना उस वस्तु को या उस चीज को स्पर्श करने दूंगा, बस मैं वही करूंगा जिसमें हमारी कृष्ण भावना अमृत में उन्नति हो। तो अगर हम वास्तव में भगवत प्राप्ति के लिए सिंसियर हैं, सीरियस हैं, तो हमें इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर धारणा बता रहे हैं क्या करना है। स्थूले भगवतो रूपे मन संधार ये धिया, स्थूले भगवते रूपे, भगवान की, ये पूरा विश्व वास्तव में भगवान का ये एक रूप है। यहाँ पर अष्टंग योगी को भगवान के स्थूल स्वरूप के अंदर अपने मन को टिकाने के लिए उसी में मन लगा ले, तो ये बहुत अजीब बात है। अगर देखा जाए, भले ही ये पूरा विश्व भगवान की ही भगवान का स्वरूप है, लेकिन इसमें कैसे मन लगेगा? पहाड़ में, नदी में, वृक्ष में मन लगेगा कैसे? मन को एक सुंदर स्वरूप चाहिए भगवान का, तो बहुत ही सरल है। हृदय जो है ना भगवान के अंदर टिकाना, भगवान के साकार रूप में हृदय मन को लगाना बहुत आसान है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण 12.2 में कहते हैं, मैया सक्त मनो ये माम नित्य योक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्त तमामता, कि जो मेरे साकार स्वरूप में अपने मन को टिकाते हैं और बहुत ही श्रद्धा से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनको श्रेष्ठ मानता हूँ। भगवान ने स्वयं कह दिया, फिर भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, अनुवाद देखिए, स्थूलो भगवते रूपे मना संधारय दिया। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, योगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे, फिर बुद्धि पूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों यानी विराट स्वरूप में रखाए। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि भौतिकता में निमग्न बद्ध जीव का मन उसे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने नहीं देता, अतएव निपट भौतिकतावादी के चरित्र को ढालने के लिए ध्यान की योग पद्धति आसन और श्वास क्रिया को नियंत्रित करने तथा मन को परमेश्वर में स्थित करने की संस्तुति की जाती है। कि अब क्योंकि उसको है ना भौतिकता से ऊपर उठता ही नहीं है, उसको हर वस्तु तो भौतिक लगती, तो भगवान का जो स्वरूप है ना उसको वो भी भौतिक लगता है। कि ये भी भौतिक है, लेकिन भक्त जानता है कि भगवान आध्यात्मिक है। चाहे वो भौतिक जगत में किसी के पुत्र बनकर आते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, लेकिन वो दिव्य हैं। लेकिन क्योंकि जो निपट भौतिकतावादी होते हैं, उनको भगवान के स्वरूप के अंदर कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर यौगिक पद्धति आसन और श्वास क्रिया के नियंत्रित तथा मन को परमेश्वर में स्थित करने की संस्तुति की गई। जब तक ऐसे भौतिकतावादी लोग भौतिकता में लिप्त मन को स्वच्छ नहीं बना देते, तब तक उनके लिए आध्यात्मिक विचारों में मन को एकाग्र कर पाना असंभव है। तो सबसे पहले भौतिकता से निकलना होगा और आध्यात्मिकता में स्थिर होना पड़ेगा। श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, ऐसा करने के लिए मनुष्य अपने मन को भगवान की स्थूल भौतिक या बाह्य पहलू में एकाग्र कर सकता है। अगले श्लोकों में भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी नियमन विधि के फलस्वरूप कुछ योग शक्तियां प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन यौगिक अनुष्ठानों का असली प्रयोजन संचित मल को यथा वासना, क्रोध, ईर्षा तथा अन्य भौतिक कलमशों को दूर करना है। वास्तव में यौगिक क्रिया जो अष्टांग योग होता है, उसका क्या प्रयोजन होता है कि हृदय पवित्र हो, हृदय के अंदर जो वासना है, क्रोध है, ईर्षा है, मलिनता है, वो कलमश साफ हो। यदि योगी चमत्कारिक आसनों के प्रदर्शन में पड़ जाता है तो उसकी योगिक सफलता का लक्ष्य विफल हो जाता है। कभी कभी योगी को बहुत सारी सफलता प्राप्त हो जाती है, लेकिन अगर वो उसके चमत्कार में ही फंस गया तो फिर उसको रियल जो उसकी सफलता होती है, जो भगवत प्राप्ति, वो नहीं होगी। इसलिए सावधान रहना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, योगी जो होते हैं उनको कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाती है और सिद्धि प्राप्त होने के बाद वो अपना रियल लक्ष्य भूल जाते हैं। ऐसे श्री प्रभुपाद जी बोलते सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसका अंतिम ध्येय तो ईश साक्षात्कार होता है। अतएव उसके लिए भिन्न धारणा के द्वारा अपने स्थूल भौतिकतावादी मन को स्थिर करने और इस तरह भगवान की शक्ति की अनुभूति करने की संस्तुति की जाती है। जो ही ये शक्तियां आध्यात्म योग की नैमित्तिक अभिव्यक्तियां प्रतीत होने लगती हैं, वैसे ही मनुष्य स्वतः आगे बढ़ जाता है और क्रमशः उसके लिए पूर्ण अनुभूति की अवस्था प्राप्त पाना संभव हो जाता है। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पर अतएव उसके लिए भिन्न धारणा के द्वारा अपने स्थूल भौतिकतावादी मन को स्थिर करने और इस तरह भगवान की शक्ति की अनुभूति करने की संस्तुति, के भौतिक वस्तुओं में भी भगवान की शक्तियों का अनुभव करना, और जैसे ही ये शक्तियां आध्यात्म की नैमित्तिक अभिव्यक्तियां प्रतीत होती हैं, फिर ये सारी शक्तियां जो है वो ऐसा लगता है कि भगवान का ही एक शक्ति स्वरूप है, तो वैसे ही मनुष्य स्वतः आगे बढ़ता है। फिर आगे भगवान को रियल में भगवान कैसे हैं उसको जानने के लिए प्रयत्न करता है और उसके लिए पूर्ण अनुभूति की अवस्था प्राप्त कर पाना संभव होता है। पहले तो वो नहीं कर पाता है, लेकिन जिस तरह से भगवद गीता के दसवें अध्याय में भगवान प्रत्येक भौतिक विभूति योग में भगवान बताते हैं प्रत्येक वस्तु में भगवान की विभूति है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड के विषय में बताने के बाद भगवान कहते हैं यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभव। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी सौंदर्य, ऐश्वर्यमान, सौंदर्यमान या प्रेम करने योग्य या अडोरेबल जो कुछ भी दिख रहा है, जिसमें कुछ श्रेय है, कुछ प्रभाव है, तो वो सब क्या है, मम तेजो अंश संभव, मेरे प्रचंड तेज का एक छोटी सी चिंगारी है। तो ये भक्त जान लेता है कि भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो भगवान का ही एक छोटा सा स्वरूप है। पूरा ब्रह्मांड जो कुछ जितने भी विश्व है वो सब भगवान के ही भगवान का एक शक्ति है। तो उसी के विषय में यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, विशेषस्तस्य देहोयम् स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं यज्यते विश्वम् भूतं भव्यं भवच्च सत्। विशेषस्तस्य देहोयम् स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं यज्यते विश्वम् भूतं भव्यं भवच्च सत्। शब्दार्थ विषे तस्य, विषे मतलब साकार रूप में, तस्य देहोयम, तस्य मतलब उसके देह यानी शरीर में, ये पूरा विशेष का मतलब होता है ब्रह्मांड या समस्त वस्तुएं, जो कुछ भी भौतिक जगत में है वो सब भगवान का ही देह है। देहोयम वो सब भगवान का शरीर है। और स्थविष्ट यानी स्थूल रूप से, भौतिक भौतिक च स्थवीय शाम, इसका मतलब होता है समस्त जो कुछ भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी पदार्थ हैं भौतिक जगत में, जो कुछ स्थूल दिख रहा है वो वास्तव में भगवान का ही स्वरूप है। यत्र इदम व्यज्यते, यत्र इदम जहां पर ये सारी घटनाएं व्यज्यते यानी अनुभव की जाती हैं, ये भौतिक जगत में जो कुछ भी अनुभव किया जाता है विश्व, इस विश्व में, सारे विश्व में, वो सब उन्हीं के विराट स्वरूप के भीतर में है। जो कुछ भी है क्या है, भूतम भव्य भवच्च सत, जो भूतकाल में, वर्तमान काल में या भविष्य काल में जो कुछ हो रहा है, हुआ है या जो होने वाला है, जो घट रहा है, जो घट चुका है या जो घटने वाला है, सब कुछ वो क्या है, विशेषस्तस्य देहोयम, वो सब भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का देह है। अनुवाद देखिए, घटनाओं से भीतर संपूर्ण भौतिक जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का व्यक्तिगत शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भौतिक काल के फलस्वरूप भूत वर्तमान तथा भविष्य का अनुभव किया जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई भी वस्तु चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति का विस्तार मात्र है, यहाँ पर और कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो भगवान की ही शक्ति का विस्तार है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता 13.13 में बताया गया है, येयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। कि येयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि, अब मैं तुमको जानने योग्य बता रहा हूँ, यज्ञात्वम अमृतम अष्टोते, और इसको प्राप्त सुनकर आपको अमृतत्व की प्राप्ति होगी। अनादि मत परम ब्रह्म, वो अनादि है लेकिन मेरे मत परम, वो ब्रह्म जो है वो मेरा ही स्वरूप है। न सद उच्यते, न वो उसको सत्य और ना ही जो असत्य उसको कहा जाता है। जो कुछ भी है वो वास्तव में मेरी ही शक्ति का प्रकटीकरण है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि 13.13 में कहा गया है कि सर्वशक्तिमान भगवान की अपनी दिव्य आंखें, सिर तथा अन्य शारीरिक अंग होते हैं जो सर्वत्र व्याप्त है। वे कहीं भी और सर्वत्र देख, सुन, छू या अपने को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि वे समस्त सूक्ष्म जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। यद्यपि भगवान विशेष धाम पर परम जगत में है, यह सापेक्ष जगत की भी जगत भी उनका घटनाओं से भरा प्रस्तुतिकरण है, क्योंकि यह उनकी दिव्य शक्ति के विस्तार के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं। भले भगवान अपने आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, परंतु इस भौतिक जगत में भी सर्वत्र प्राणी पादे, उसके हर जगह पर उनके आंखें हैं, उनका मुख है, उनके नेत्र हैं, तो वे समस्त सूक्ष्म जीवों के अंदर भी परमात्मा के स्वरूप में रह रहे हैं। तो भले ही उनका एक स्वरूप धाम में है, लेकिन प्रत्येक वस्तु भी तो उन्हीं का प्रकटीकरण है, उन्हीं की शक्ति है और उसके अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं है। यद्यपि वे अपने धाम में रहते हैं, किंतु अपने उनकी शक्ति सर्वत्र उसी तरह वितरित होती रहती है जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर रहकर भी सर्वत्र प्रसारित होता रहता है। क्योंकि सूर्य की किरणें सूर्य से अभिन्न होने के कारण सूर्य गोलक का विस्तार ही मानी जाती है ना। सूर्य भले ही आसमान पर रहता है, लेकिन उसकी शक्ति, उसका प्रकाश तो प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु पर पड़ता है। उसी तरह भगवान भी भले ही अपने आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, लेकिन ये प्रत्येक वस्तु उन्हीं का ही, उन्हीं की शक्ति है। विष्णु पुराण 1.22.52 में कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर अपनी किरणों तथा उष्मा फैलाती है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान अपनी बहुविध शक्तियों से यत्र तत्र और सर्वत्र अपना विस्तार करते हैं। तो भगवान के लिए वो स्वयं नहीं जिस समय दिख रहे होते हैं, तो भी प्रत्येक वस्तु उनका है। भगवान कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, ये सब मेरी शक्तियां हैं। तो ये सब भगवान की ही शक्ति है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, विराट ब्रह्मांड की ये अभिव्यक्ति उनके विराट शरीर का अंश मात्र है। अल्पज्ञ लोग भगवान के सर्वथा आध्यात्मिक दिव्य स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वे उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा उसी तरह आश्चर्यचकित रहते हैं जिस तरह आदिम प्रजाति के लोग आकाश की बिजली, विशाल पर्वत या विस्तृत बरगद के पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब यहाँ वो भगवान को तो नहीं देख पाते, लेकिन जो लोग जैसे आदिवासी होते ना, वो अचानक से बिजली निकलती है आकाश से, वो भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन वो समझते हैं यार ये बिजली, ये जरूर बहुत ही भव्य है, ये इसके अंदर बहुत चमत्कार है, कहाँ से आई ये बिजली। और विशाल पर्वत को देखते हैं या बरगद का बड़ा पेड़ देखते हैं, तो उनकी पूजा करना शुरू हो जाता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वे लोग व्याघ्र तथा हाथी के बल की प्रशंसा उनकी श्रेष्ठ शक्ति तथा शौर्य के लिए करते हैं। यद्यपि प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान का विशद वर्णन दिया गया है, फिर भी असुर गण भगवान के अस्तित्व में नहीं मानते हैं। यद्यपि भगवान अवतरित होते हैं और अपनी असामान्य शक्ति तथा शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, यद्यपि वे विद्वान पंडितों तथा भूतकाल के व्यासदेव, नारद, असिद एवं देवल जैसे संतों तथा श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन द्वारा एवं आधुनिक युग में भी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, भगवान के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे आचार्यों द्वारा भगवान के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं, लेकिन असुरगण भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। श्री प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि वो जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, वास्तव में असुर होते हैं। रावण को बहुत समझाया मारीच ने कि रावण जी, तुम जिसको साधारण मनुष्य समझ रहे हो, वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान है। भगवान जब इसने मुझे एक तीर मारा था, बिना फण का, ऊपर से तीर के ऊपर जो मारने के लिए नहीं एक पीस लगा हुआ था, वो नहीं लगा हुआ था, और अपने सारंग धनुष्य में डालकर नहीं ऐसे ही हाथ से मार दिया था, और मैं इतना दूर जाकर समुद्र के पार गिर गया, 99 योजन क्रॉस करके यहाँ पर आ गया, तो तुम खुद सोचो कि ये जब आएंगे और यहाँ युद्ध करेंगे तो कितना जीवों की हत्या होगी, तो आप कृपा करके उसकी पत्नी को मत उठाओ। रावण को बहुत समझाया, परंतु असुर गण, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो असुर गण होते ना, वो कभी भी भगवान को स्वीकार नहीं करते, भगवान के रूप में स्वीकृत किए भले ही कितने ही शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है, वेद व्यास जी स्वयं अपने शास्त्र में कहते हैं कि इति चान सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। नारद असद देवल सब इस बात की का प्रमाण देते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप ही परम ब्रह्म हो, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम। भगवान स्वयं आके बताते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। लेकिन वो नहीं मानते। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु बनकर भक्त की भूमिका निभाते हुए प्रत्येक जीव को बताते हैं कि भगवान से किस तरह प्रेम करना चाहिए। लेकिन फिर भी असुरगण भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। लेकिन असुरगण भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। असुरगण शास्त्रों के किसी भी साक्ष्य को स्वीकार नहीं करते, न ही वे महान आचार्यों के प्रमाणों को मान्यता देते हैं। वे तुरंत अपनी आंखों से उन्हें देखना चाहते हैं, अतएव वे भगवान के शरीर को विराट रूप में देख सकते हैं और वही रूप उनकी चुनौती का उत्तर दे सकता है। और चूंकि वे व्याघ्र हाथी या बिजली जैसे श्रेष्ठ भौतिक वस्तुओं के समक्ष श्रद्धावनत होने के आदि हैं, अतएव वे विराट रूप को सम्मान प्रदान करते हैं। अर्जुन द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने असुरों के लिए विराट स्वरूप प्रदर्शित किया। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के ऐसे संसारी विराट रूप शरीर को देखने के लिए आदि नहीं होता है, अतएव उसे देखने के लिए उसे विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को विशेष दृष्टि प्रदान करने की अनुकंपा की। अर्जुन को भगवान ने इन नेत्रों के साथ वो विश्वरूप नहीं दिखाया, एक दूसरी दिव्य दृष्टि दी। बोला, भक्त को तो केवल मेरा ये सौम्य स्वरूप ही दिखता है, इसलिए तुमको वो रूप देखने के लिए दूसरी दृष्टि चाहिए होगी। भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कभी भी कि मेरा ये सुंदर सौम्य और रसमयी स्वरूप देखने के लिए तुम्हें कोई दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी। वो तो अर्जुन देख रहा था अपने नेत्रों से। भक्त सदैव कृष्ण को देखता रहता है, हर जगह हर समय कृष्ण को अनुभव करता रहता है। उसको उस विराट स्वरूप में कोई आकर्षण नहीं होता है। यही बात यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसीलिए भगवान ने अर्जुन को विशेष दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वह उनके विराट रूप का दर्शन कर सके, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। भगवान का यह विराट रूप अर्जुन के लाभ के लिए नहीं, अपितु उन अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से प्रकट किया गया था, जो हर किसी को भगवान का अवतार मान लेते हैं और इस तरह जन सामान्य को गुमराह कर लेते हैं। उनके लिए यह संकेत है कि मनुष्य ऐसे सस्ते अवतार से कहे कि तुम अपना विराट रूप दिखाओ और अपने को अवतार सिद्ध करो। भगवान के विराट रूप का प्राकट्य एक साथ नास्तिकों के लिए चुनौती था तथा असुरों के लिए कृपा है, जो भगवान को विराट रूप में समझ सकें और इस तरह धीरे धीरे अपने हृदय के मेल को स्वच्छ कर सकें। तो ये विश्वरूप भगवान ने दिखाया 11वें अध्याय में अर्जुन को कि प्रत्येक वस्तु भगवान के ही स्वरूप भगवान के ही अंदर है। कृष्ण कोई साधारण जीव नहीं है, क्योंकि कोई भी साधारण जीव आज भगवान होने का दावा करता है लेकिन वो विश्वरूप नहीं दिखा सकता, तो फिर वो भगवान कैसे हो सकता है। कृष्ण के अंदर प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति है। भगवान का विश्वरूप जब अर्जुन ने देखा तब अर्जुन ने बताया था कि सारे देवी देवता मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर बैठा हुआ विराजमान देखता हूँ, शिव जी को उनके हिमालय पर बैठा हुआ देखता हूँ, प्रत्येक जितने भी असुर हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं, सब आपके स्वरूप में दिख रहे हैं और ये सब आश्चर्यजनक है। जितने भी यहाँ पर योद्धा हैं वो आपके मुख में दिख रहे हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भगवान का जो स्वरूप है नास्तिकों के लिए चुनौती है। नास्तिक जो भगवान को नहीं मानते हैं वो सोचते हैं भगवान का स्वरूप साधारण है, लेकिन भगवान का स्वरूप दिव्य है और असुरों के लिए कृपा है। एक न एक दिन तो भगवान के विश्व रूप के को देखते देखते हृदय के अंदर मलिनता स्वच्छ हो जाएगी, जिससे वे निकट भविष्य में भगवान के दिव्य स्वरूप को सचमुच देखने के योग्य हो सकेंगे। यह समस्त नास्तिकों तथा निपट भौतिकतावादियों के लिए सर्व दयालु भगवान का वरदान है, ये भगवान की कृपा है कि जीव जिस स्तर पर होता है जीव को वहां पर अनुकंपा प्रदान करते हैं ताकि धीरे 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 वो ऊपर उठ सके और भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर धारणा के विषय में बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान के प्रत्येक वस्तु को भगवान का ही स्वरूप जानकर उसके अंदर धारणा को स्थित किया जाता है और इस तरह धीरे धीरे उन्नति करके आगे सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर उपदेश देंगे। कृपया आप सब साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे